यहोशू। मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने यहोशू से कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। दृढ़ और साहसी बनो, क्योंकि तुम इन लोगों को उस देश का अधिकारी करोगे जिसके विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई है। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुम्हें दी है उन सबों के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर, कि जहां कहीं तुम जाओ वहां तुम्हें अच्छी सफलता मिले। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी न उतरने पाए, वरन दिन रात इस पर ध्यान किया करते रहना, कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करना, क्योंकि तब तू अपना मार्ग सफल करेगा और तब तुझे अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यहोशू ने अधिकारियों को आज्ञा दी कि वे लोगों को आज्ञा दें, अपना भोजन तैयार करो, क्योंकि तीन दिन के भीतर तुम्हें इस यर्दन को पार करके उस देश पर अधिकार करने को जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें अधिकारने में करने को देता है। यहोशू ने गुप्त रूप से दो व्यक्तियों को जासूस बनाकर भेजा और कहा, जाओ देश को देखो, विशेषकर यरीहो को, और वे जाकर राहाब नाम एक वेश्या के घर में पहुंचे और वहां टिके। उन पुरुषों के लेटने से पहले वह छत पर उनके पास आई और उन पुरुषों से कहने लगी, मैं जानती हूं कि यहोवा ने तुमको वह देश दिया है और तुम्हारा भय हम पर और उसके सब निवासियों पर समा गया है। तुम्हारे सामने जमीन पिघल जाएगी, क्योंकि हमने सुना है कि जब तुम मिस्र से निकले तब यहोवा ने तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुमने एमोरियों के दोनों राजाओं से क्या क्या किया। यह सुनते ही हमारा हृदय द्रवित हो गया और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के कारण तुम्हारे कारण किसी में कुछ भी आत्मा न बची। अब तू मुझसे यहोवा की शपथ खा कि जैसे मैंने तुझसे भलाई की है वैसे ही तू भी मेरे पिता के घराने से भलाई करेगा, और मुझे पक्की निशानी दे कि तू मेरे माता पिता और मेरे भाइयों और बहनों को जीवित बचाएगा और उन सबों को जो उनके हैं, और हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाओ। और उन पुरुषों ने उससे कहा, हमारे प्राण तुम्हारे लिए यहाँ तक हैं कि यहाँ तक कि प्राण भी ले लें। उसने उनको खिड़की से रस्सी के द्वारा उतार दिया, क्योंकि उसका घर नगर की शहरपनाह में बना था और वह उस शहरपनाह में रहती थी। और उसने कहा, जा पहाड़ियों में चले जाओ, नहीं तो पीछा करने वाले तुम्हारा सामना करेंगे, और जब तक पीछा करने वाले लौट न आए तब तक तीन दिन तक वहीं छुपे रहना, फिर उसके बाद तुम अपने रास्ते जा सकते हो। वे पहाड़ियों से उतरे और पार चले गए और आकर यहोशू को अपना सब कुछ बता दिया और कहा, सचमुच यहोवा ने सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है और इस देश के सब निवासी हमारे कारण नष्ट हो जाते हैं। यहोवा ने यहोशू से कहा, आज मैं तुझे सारे इसराइल के सामने बड़ा करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे संग रहूंगा। वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि जब तुम यर्दन के जल के तीर पर पहुंचो तब यर्दन में खड़े रहना। यहोशू ने इसराइल के लोगों से कहा, यहाँ आओ और अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो, तब तुम जानोगे कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे बीच में है और वह तुम्हारे सामने से अवश्य निकाल देगा। जब लोग वाचा का संदूक उठाए हुए याजकों को लेकर यर्दन के पार जाने को अपने अपने डेरों से निकले और जब संदूक उठाने वाले यर्दन के पास पहुंचे और याजकों के पास वाचा का संदूक उठाए हुए थे, संदूक पानी के किनारे डुबाया गया। अब फसल के समय यर्दन अपने सभी तटों पर पानी भर जाता है, ऊपर से आने वाला पानी रुक गया और बहुत दूर तक एक ढेर में चढ़ गया, और जो अराबा सागर नमक सागर की ओर बह रहा था वह पूरी तरह से कट गया, और लोग यरीहो के सामने से होकर सूखी भूमि पर पार हो गए, यहां तक कि सारी जाति के लोग यर्दन पार हो गए। पहले महीने के दसवें दिन को लोग यर्दन में से निकल आए और यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में डेरे खड़े किए। प्रभु ने यहोशू से कहा कि वह सभी खतनारहित पुरुषों का खतना करे, क्योंकि मिस्र से निकलने के बाद किसी का भी खतना नहीं हुआ था। मूसा को पुरानी वाचा दिए जाने से बहुत पहले खतना इब्राहिम के साथ परमेश्वर की वाचा का एक संकेत था। महीने के 14वें दिन की शाम को जब इसराइलियों ने यरीहो के मैदान में गिलगाल में डेरा डाला, तब उन्होंने फसह मनाया। जब यहोशू यरीहो के निकट था, तब उसने ऊपर दृष्टि की और हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक मनुष्य को उसके सामने खड़ा देखा। यहोशू उसके पास गया और पूछा, क्या तुम हमारे लिए हो या हमारे शत्रुओं के लिए? नहीं, उसने उत्तर दिया, लेकिन मैं अब प्रभु की सेना के कमांडर के रूप में आया हूँ। तब यहोशू ने श्रद्धा से भूमि पर मुंह के बल गिरकर उससे पूछा, मेरे प्रभु के पास अपने दास के लिए क्या संदेश है? अब यरीहो इसराइलियों के कारण कसकर बंद कर दिया गया था, न कोई बाहर गया और न कोई भीतर आया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, देख, मैं यरीहो को उसके राजा और योद्धाओं समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ। सभी हथियारबंद लोगों के साथ एक बार शहर के चारों ओर मार्च करें। ऐसा 6 दिन तक करें। 7 याजकों को मेढ़ों के सींगों की तुरहिया लेकर संदूक के आगे आगे ले चलो। 7वें दिन याजकों के साथ तुरहियां फूंकते हुए नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। 7वें दिन वे भोर को उठे और उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूमे, परंतु उस दिन उन्होंने नगर के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाया। जब याजकों ने नरसिंगा फूंका, तब यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, चिल्लाओ, क्योंकि यहोवा ने तुमको यह नगर दिया है। वह नगर और जो कुछ उसमें है, वह सब यहोवा को समर्पित किया जाए। केवल राहाब वेश्या और उसके सब साथी उसके घर में वह बचा रहेगा। तब जो जवान जासूसी कर रहे थे, उन्होंने भीतर जाकर राहाब और उसके माता पिता और भाइयों और सब लोगों को जो उसके हों निकालकर इसराइल की छावनी के बाहर एक स्यान में रख दिया। उन्होंने पूरे शहर और उसमें मौजूद हर चीज को जला दिया, परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया। अचन ने उत्तर दिया, यह सच है, मैंने इसराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। जब मैंने उस लूट में बेबीलोनिया का एक सुंदर अंगरखा और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने का एक टुकड़ा देखा, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें ले लिया और अपने तंबू के भीतर भूमि में छिपा दिया और नीचे चांदी भी रखी रही। तब सब इसराइलियों ने उस पर पथराव किया और बचे हुए लोगों को पथराव करके जला दिया। तब यहोवा अपना भड़का हुआ क्रोध शांत हो गया। फिर यहोशू ने ऐ को पकड़ लिया और जला दिया। तब यहोशू ने एबाल पर्वत पर इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इसराइलियों को आज्ञा दी थी। उसने इसे मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखे अनुसार बनाया, बिना तराशे पत्थरों की एक वेदी, जिस पर किसी भी लोहे के उपकरण का उपयोग नहीं किया गया था। उस पर उन्होंने यहोवा को होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। वहां यहोशू ने इसराइलियों के सामने मूसा की जो व्यवस्था उसने लिखी थी, उसकी नकल पत्थरों पर कर दी। समस्त इसराइली, परदेशी और नागरिक अपने पुरनियों, हाकिमों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा के संदूक के दोनों ओर ले जाने वाले याजकों के सामने खड़े थे। जब गिबोन के लोगों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ऐ के साथ क्या किया है, तो उन्होंने छल किया। घिसे पिटे बोरे और फटी और मरम्मत की हुई पुरानी मशकों के साथ पुरुष अपने पैरों में घिसे पिटे और पैबंद लगे सैंडल पहनते थे और पुराने कपड़े पहनते थे। उनके भोजन की सारी रोटी सूखी और फफूंद लगी हुई थी। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास गए और उससे और इसराइलियों से कहने लगे, हम लोग दूर देश से आए हैं, हमारे साथ संधि करो। इसराइल के लोगों ने अपने भोजन का नमूना लिया, परंतु यहोवा से पूछताछ नहीं की। तब यहोशू ने उन्हें जीवित रहने देने के लिए उनसे मेल की संधि की और सभा के प्रधानों ने शपथ खाकर उसकी पुष्टि की। गिबोनियों से संधि करने के 3 दिन बाद इसराइलियों ने सुना कि वे हमारे पड़ोसी हैं और उनके निकट रहते हैं। सारी सभा प्रधानों पर बुड़बुड़ाने लगी, परंतु सब प्रधानों ने उत्तर दिया, हमने उनको यहोवा की शपथ खिलाई है, इसराइल का परमेश्वर, और अब हम उन्हें छू नहीं सकते। तब यहोशू ने गिबोनियों को बुलवाकर कहा, तुमने यह कहकर हमको धोखा क्यों दिया कि हम तुमसे कोसों दूर रहते हैं और तुम तो हमारे निकट रहते हो। अब तुम शाप के अधीन हो, तुम मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारे और पानी ढोने का काम करना कभी नहीं छोड़ोगे। जब एमोरियों के पांच राजा यरूशलेम, हेब्रोन, यरमूत, लाकीश और एगलोन के राजा थे, सैन्य दल में शामिल हुए, वे अपनी सारी सेना के साथ आगे बढ़े और गिबोन के विरुद्ध मोर्चा ले लिया और उस पर आक्रमण किया। तब गिबोनियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यह कहला भेजा कि अपने सेवकों को मत छोड़ो, जल्दी से हमारे पास आओ और हमें बचाओ। इसलिए यहोशू ने अपनी पूरी सेना के साथ गिलगाल से प्रस्थान किया। यहोवा ने एमोरियों को इसराइल के वश में कर दिया। जब यहोशू बूढ़ा हो गया और बहुत आयु में बढ़ गया, तब यहोवा ने उससे कहा, तू बहुत बूढ़ा है और अभी भी भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र लेना बाकी है। परंतु इसराइलियों ने सभी लोगों को बाहर नहीं निकाला। कालेब ने यहोशू से कहा, तू जानता है कि यहोवा ने कादेश बर्ने में मूसा से तेरे और मेरे विषय में क्या कहा था। मैं 40 वर्ष का था जब यहोवा के सेवक मूसा ने मुझे कादेश बर्ने से देश का पता लगाने के लिए भेजा। मैं अपने विश्वास के अनुसार उसके पास रिपोर्ट लेकर आया, परंतु मेरे भाई जो मेरे साथ गए थे, उन्होंने लोगों के हृदय भय से पिघला दिए। हालांकि मैंने पूरे दिल से अपने परमेश्वर यहोवा का अनुसरण किया। इसलिए उस दिन मूसा ने मुझसे शपथ खाई कि जिस भूमि पर तूने पाँव रखा है वह सदा तेरा और तेरे वंश का निज भाग बना रहेगा, क्योंकि तूने पूरे मन से मेरे परमेश्वर यहोवा का अनुसरण किया है। जब से उसने मूसा से यह कहा, तब से उसने, परमेश्वर ने, 45 वर्ष तक मुझे जीवित रखा है और इसराइल जंगल में घूमता रहा, तो आज मैं यहाँ हूँ 75 साल का। मैं आज भी उतना ही बलशाली हूँ जितना उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था। मैं अब भी युद्ध के लिए जाने के लिए उतना ही सशक्त हूँ जितना तब था। अब यह पहाड़ी देश मुझे दे दो जिसका वादा यहोवा ने उस दिन मुझसे किया था। तब तूने सुना कि वहाँ अनाकी लोग थे और उनके नगर बड़े और दृढ़ थे, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की, जैसा उसने कहा है वैसा ही मैं उन्हें निकाल दूंगा। तब यहोशू ने यपुन्ने के पुत्र कालेब को आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को उसका निज भाग कर दिया। हेब्रोन कालेब का हो गया क्योंकि उसने पूरे मन से इसराइल के परमेश्वर यहोवा का अनुसरण किया। तब देश को युद्ध से विश्राम मिला। यहोवा ने उनको चारों ओर से विश्राम दिया जैसा उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी। उनके शत्रुओं में से किसी ने भी उनका सामना नहीं किया। यहोवा ने उनके सब शत्रुओं को उनके वश में कर दिया। इसराइल के घराने के प्रति यहोवा के सभी अच्छे वादों में से एक भी पूरा नहीं हुआ, हर कोई पूरा हुआ। तब यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र को बुलाकर उनसे कहा, जो कुछ यहोवा के दास मूसा ने आज्ञा दी थी वह सब तुमने किया है, और जो कुछ मैंने आज्ञा दी है उन सब को तुमने माना है। आज तक तुमने अपने भाइयों को नहीं त्यागा, परंतु जो काम तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया था उसे पूरा किया है। यहोवा के दास ने तुम्हें यर्दन के उस पार दिया है, परंतु जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी है उसके मानने में चौकसी करना कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उससे दृढ़ता से जुड़े रहो और अपने सारे हृदय और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उनको आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने घर को चले गए। जब वे कनान देश में यर्दन के पास गेलिलोत में आए, तब रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र ने यर्दन के किनारे एक भव्य वेदी बनाई। जब इसराइलियों ने सुना कि उन्होंने कनान की सीमा पर इसराइल की ओर से यर्दन के निकट गेलिलोत में वेदी बनाई है, तब इसराइल की सारी सभा उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए शीलो में इकट्ठी हुई। इसलिए इसराइलियों ने एलियाजर के पुत्र याजक पीनहास को रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र के पास गिलाद देश में भेजा। उसके साथ उन्होंने 10 मुख्य पुरुषों को भेजा, अर्थात इसराइल के गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के लिए एक, और इसराइली कुलों के एक एक परिवार के मुख्य पुरुष। जब वे गिलाद में रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र के पास गए, तब उन्होंने उनसे कहा, यहोवा की सारी सभा कहती है, तुम इसराइल के परमेश्वर का विश्वास इस प्रकार कैसे तोड़ सकते हो? अब यहोवा से दूर हो जाओ और उसके विरुद्ध बलवा करके वेदी बनाओ। क्या पोर का पाप हमारे लिए काफी नहीं है? और क्या तुम अब प्रभु से विमुख हो रहे हो? तब रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र ने उत्तर दिया, हे पराक्रमी परमेश्वर यहोवा, पराक्रमी परमेश्वर प्रभु वह जानता है। आइए हम तैयार हों और एक वेदी बनाएं, लेकिन होमबलिया बलिदान के लिए नहीं, इसके विपरीत यह हमारे और तुम्हारे और आने वाली पीढ़ियों के बीच एक गवाही होगी कि हम अपने होमबली, मेलबली और मेलबली के द्वारा यहोवा के पवित्र स्थान में उसकी आराधना करेंगे। तब भविष्य में तुम्हारे वंशज हमारे वंश से यह न कह सकेंगे, प्रभु में तुम्हारा कोई भाग नहीं। यदि वे कभी हमसे या हमारे वंशजों से ऐसा कहें, तो हम उत्तर देंगे, प्रभु की वेदी की प्रतिकृति को देखो, जिसे हमारे पूर्वजों ने होमबलि और बलिदान के लिए नहीं, बल्कि हमारे और तुम्हारे बीच एक गवाह के रूप में बनाया था, जब याजक पीनहास और मंडली के प्रधानों और इसराइलियों के कुलों के मुख्य पुरुषों ने रूबेन, गाद और मनश्शे की बातें सुनी, तो वे प्रसन्न हुए। और एलियाजर याजक के पुत्र पीनहास ने रूबेन, गाद और मनश्शे से कहा, आज हम जान गए कि यहोवा हमारे संग है, क्योंकि तुमने इस विषय में यहोवा के प्रति विश्वासघात नहीं किया। अब तुमने इसराइलियों को यहोवा के हाथ से छुड़ा लिया है। हाथ बहुत समय बीत जाने के बाद यहोशू बूढ़ा हो गया था और आयु में बहुत बड़ा हो गया था, और सब इसराइलियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आयु में बहुत बड़ा हो गया हूँ। तुमने आप ही देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने इन सब जातियों के लिथे क्या क्या किया है। तुम्हारे लिए यहोवा तुम्हारा परमेश्वर ही था जो तुम्हारे लिए लड़ा। बहुत मजबूत बनो, मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसका पालन करने में सावधान रहना, बिना दाएं या बाएं मुड़े उन राष्ट्रों के साथ संगति न करना जो तुम्हारे बीच में बचे हैं, उनके देवताओं का नाम न लेना और न उनकी शपथ खाना। तुम्हें उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए और न ही उनके सामने झुकना चाहिए, परंतु तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा को थामे रहना है, जैसा अब तक तुम पकड़े रहे हो। परंतु यदि तू उन जातियों के बचे हुओं से मुंह मोड़कर उनसे मेल मिलाप कर ले जो तुम्हारे बीच में बचे हैं, और यदि तुम उनके साथ विवाह करो और उनके साथ मेलजोल रखो, तो तुम निश्चित हो जाओ कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तुम्हारे सामने से फिर न निकालेगा। इसके बजाय वे तुम्हारे लिए जाल और जाल, तुम्हारी पीठ पर कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे होंगे, जब तक कि तुम इस अच्छी भूमि से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट न हो जाओ। अब मैं सारी पृथ्वी के मार्ग पर जाने वाला हूँ। आप अपने पूरे दिल और आत्मा से जानते हैं कि आपके भगवान ने आपको जो अच्छे वादे दिए थे उनमें से एक भी विफल नहीं हुआ है। हर वादा पूरा हुआ, कोई भी असफल नहीं हुआ है। परंतु जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की सब अच्छी प्रतिज्ञाएं पूरी हुई हैं, वैसे ही यहोवा तुम पर वह सारी बुराई लाएगा जिसकी उसने धमकी दी है, जब तक कि वह तुम्हें इस अच्छे देश से नष्ट न कर दे जो उसने तुम्हें दिया है। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उस वाचा को तोड़ोगे जो उसने तुमको दी है और जाकर दूसरे देवताओं की उपासना करो और उनको दंडवत करो, तो यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम उस अच्छे देश में से जो उसने तुम्हें दिया है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। तब यहोशू ने इसराइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया। उसने इसराइल के पुरनियों, नेताओं, न्यायियों और हाकिमों को बुलाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। इसराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, बहुत समय पहले तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम और नाहोर के पिता तेरह समेत नदी के पार रहते थे और अन्य देवताओं की पूजा करते थे, परंतु मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम को महानद के पार के देश से ले आया और पूरे कनान में ले गया। मैंने मूसा और हारून को भेजा और जो कुछ मैंने वहां किया उससे मिस्रियों को दुख दिया और तुमको मिस्र से निकाल लाया। फिर तुमने यर्दन पार किया। मैंने तुम्हें वह भूमि दी है जिस पर तुमने कुछ परिश्रम नहीं किया और जो नगर तुमने नहीं बनाए और तुम उनमें बसते हो और दाख की बारियों और जैतून के बागों का फल खाते हो जो तुमने नहीं लगाए। अब यहोवा का भय मानो और पूरी सच्चाई से उसकी सेवा करो। यदि तुम यहोवा को त्यागोगे और पराए देवताओं की सेवा करोगे तो वह तुम्हारे प्रति भलाई करने के बाद तुम पर विपत्ति डालेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। परंतु लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम प्रभु की सेवा करेंगे। तब यहोशू ने कहा, तुम अब के ही विरुद्ध गवाह हो कि तुमने यहोवा की सेवा करना चुन लिया है। हाँ, हम गवाह हैं। यहोशू की मृत्यु 110 वर्ष की आयु में हुई। उन्होंने उसे उसके निज भाग में गाश पर्वत के उत्तर में एप्रैम के पहाड़ी देश में तिम्नत्सेरह में मिट्टी दी। यहोशू के जीवन भर इसराइल ने यहोवा की सेवा की और उन पुरनियों की भी सेवा की जो उसके जीवित रहे और जिन्होंने यहोवा ने इसराइल के लिए जो कुछ किया था उसका अनुभव किया था। और यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इसराइली मिस्र से ले आए थे शकेम में उस भूमि में गाड़ दी जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 सिक्कों चांदी में मोल लिया था। यह यूसुफ के वंशजों की विरासत बन गई। और हारून का पुत्र एलियाजर मर गया और उसे गिबा में मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पीनहास को एप्रैम के पहाड़ी देश में दिया गया था। जोशुआ के मुख्य बिंदु। परमेश्वर का कोई भी वादा कभी विफल नहीं होता। प्रभु ने अपने सेवक यहोशू के माध्यम से सीधे इसराइलियों से बात की, लेकिन अब अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से अपने लोगों से बात करते हैं। व्यवस्था की पुस्तक से न हटो परंतु दिन रात उस पर ध्यान करो। हमारे लिए आज हमें लगन से अध्ययन करना चाहिए और ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए उसके प्रेरित वचन पर मनन करना चाहिए और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे ईश्वर के साथ हो या लोगों के साथ, बेवफाई दर्द और दुहक लाती है। यह इस वर्तमान जीवन में नहीं बल्कि अनंत जीवन में हो सकता है यदि क्षमा न किया गया हो। जब इसराइली मजबूत, वफादार और धर्मी नेता थे तब भी वे परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। परमेश्वर ने मसीह और उसके प्रायश्चित बलिदान द्वारा स्थापित राज्य में अपने आध्यात्मिक नेताओं की आवश्यकताएं दीं।